हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 5। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 12 वर्स नंबर 5। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि कतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि कतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि कतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि कतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। शब्दात् क्लेश यानी कष्ट, अधिकतर यानी अत्यधिक, तेषां उनको, अव्यक्त यानी अव्यक्त के प्रति आसक्त अनुरक्त, चेतसाम मन वालों का, अव्यक्ता यानी अव्यक्त की ओर ही निश्चय ही गति यानी प्रगति दुखम अर्थात दुख के साथ देहवत भी अर्थात शरीर के द्वारा अवाप्यते प्राप्त किया जाता है। अनुवाद, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यधिक कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहदारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहदारी है और सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योग की कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे वह रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में जो विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर हो लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिका यानी लेटर बॉक्स होते हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं अपना प्रामाणिक यानी वेद स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वह अर्चा विग्रह के रूप में अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उचिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहे तो उसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी सत्य को गीय चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो करा सकता है, लेकिन आनंदमयी अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह इस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्ति की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है और उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म यानी स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट होता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले ही कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अध्याय 12, जिसका नाम है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब होता है भक्ति के द्वारा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना। वैसे तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के और भी तरीके हैं, लेकिन दो तरीके बहुत ज्यादा विख्यात हैं, जो उनका वेदों में भी बताया गया है। वेदों में दो तरीके कौन से बताए गए हैं? एक साकार उपासना और दूसरा निराकार उपासना। तो अर्जुन भगवान से इस अध्याय के शुरू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, क्योंकि दोनों रास्तों पर चलने के बाद प्रसन्न किसको करना है? भगवान को करना है। और प्राप्त किसको करना है? भगवान को करना है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं श्लोक नंबर 1 में,
एवं सतत युक्ता विभक्ता स्वाम पर उपासते। आप ये बताओ, जो सतत युक्ता कंटिन्यूस लगा रहता है किसमें? भक्ता स्तोम, तुम्हारी भक्ति में लगा रहता है, तुम्हारी पूजा में लगा रहता है, तुम्हें कभी श्रृंगार करता है, कभी भोजन खिलाता है, कभी तुम्हारे वस्त्र बनाता है, तो कभी तुम्हारे लिए फूलों की के गार्लेंड्स बनाता है, कभी सतत युक्ता कंटिन्यूस तुम्हारी भक्ति में लगा रहता है। और दूसरा क्या होता है, ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के ही योगवित्तम। और जो अक्षर और अव्यक्त, अक्षर मतलब जो इंद्रियों के द्वारा ना देखा जा सकता है, और अव्यक्त यानी फॉर्मलेस है, उसका फॉर्म भी नहीं है, तो आपके उस स्वरूप की जो पूजा करता है उन दोनों में से कौन अधिक सिद्ध है? तेषाम के योगवित्तम, क्योंकि दोनों फॉर्म आपके ही है, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हो कि दोनों में से परम सिद्ध कौन है। मतलब यहाँ पर अर्जुन ने ऐसे पूछा है जैसे, अगर बहुत ही सुंदर एग्जांपल है यहाँ पर, कि अगर आपको किसी को भोजन कराना हो और भोजन कराने से पहले आप उससे ऐसे पूछो, आप किस प्रकार का खाना पसंद करोगे? प्रसन्न मुझे आपको करना है, मैं जानता हूं कि दोनों स्वरूप आपके हैं, निराकार भी आपका स्वरूप है, साकार भी आपका स्वरूप है, तो आप बताओ आप किस तरह की पूजा को अधिक सिद्ध मानते हो, किस तरह की उपासना करने वाले को अधिक सिद्ध मानते हो। तब भगवान दूसरे श्लोक में बहुत ही सुंदर शब्दों में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, मय्यावेश मनोयम, यानी जो अपने मन को सदैव मुझ में आवेश रखते हैं, यानी अब मेरे साकार स्वरूप में सदैव अपना मन लगाए रखते हैं, और नित्य युक्ता, नित्य मीन्स कंटिन्यूअस, युक्ता मन सावधानी के साथ मेरी उपासना करते हैं, मन जो मेरी भक्ति करते हैं, और उसके साथ साथ श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धया मतलब बहुत ही दृढ़ श्रद्धा के साथ, साधारण श्रद्धा नहीं, परय श्रद्धा, भले कुछ भी उनको यदि कष्ट भी मिलता है तो भी उनको श्रद्धा मेरे ऊपर होती है कि मैं जो भी करता हूँ उनकी भलाई के लिए करता हूँ, उनके कल्याण के लिए करता हूँ। तो श्रद्धया परयोपेता, यानी ऐसे जो होते हैं जो श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, तेमे युक्त तमामता, मेरा ओपिनियन ये है कि वो जो है वो अधिक सिद्ध है। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 3 में बताया कि वो जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो कैसा होता है। अभी भगवान के स्वरूप के बारे में भगवान को बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सामने खड़े हैं, तो साकार स्वरूप में तो भगवान वैसे ही होंगे ना, द्विभुज होंगे, उनके हाथों में बांसुरी होगी और है ना पगड़ी में मोर पंख लगा हुआ होगा, पीतांबर पहने हुए होंगे, कमल जैसे सुंदर नेत्र होंगे और मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसे होंगे ना। अभी अव्यक्त स्वरूप कैसा है उसके 8 सिम्टम्स बताए कि वो कैसा है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम, एक तो अक्षर होता है, अक्षर माना वो अपनी इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, अनिर्देशम मतलब कि उसके बारे में नो डायरेक्शन, कोई बता भी नहीं सकता, अव्यक्तम यानी उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, पर उपासते जो उसको उपासना करते हैं, और वो आगे कैसा होता है, सर्वत्र गम, हर जगह पे होता है, हर जगह फैला हुआ है, अचिंत्यम उसका चिंतन नहीं कर सकते, कूटस्थम वो फिर कूटस्थ मतलब बदलता नहीं है, अचलम वो स्थिर है, और ध्रुवम फिक्स है। यानी ये 8 चीजें बताई कि वो कैसा है, अव्यक्त जो है वो कैसा है। और अब आगे श्लोक नंबर 4 में भगवान ने बताया है कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या काम करना है, माने उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 3 मुख्य काम बताए। पहला क्या है, संयम येन्द्रिय ग्रामम, यानी सारी इंद्रियों को, जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको संयमित करना है, और दूसरा सर्वत्र समबुद्धया, हर किसी के सुख और दुख में आपको संभाव रखना है, चाहे कोई कैसा भी हो आपको मतलब सबके साथ संभाव रखना है, और दूसरा आगे अगर आप ऐसा करोगे तो ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो भी मुझे प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ उसको ये भी करना पड़ेगा, सर्वभूत हितेरथा, जितने भी भूत प्राणी हैं यानी सारे शरीर धारियों के हितेरथा, उनके लिए उनका हित सोचना पड़ेगा। मतलब सारे भूत प्राणी मतलब क्या, कि भले आपके शत्रु हैं, भले आपके मित्र हैं, भले आपके लिए बुरा सोचते हैं, भले मनुष्य हैं, भले पशु हैं, भले पक्षी हैं, सबके कल्याण के लिए सोचना पड़ेगा। ये तीन काम करने पड़ेंगे। एक तो अपनी समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल मना बिल्कुल कंट्रोल, उनको ना देखने दो, ना सोने, ना खाने दो, ना सुनने दो, मतलब बिल्कुल कंट्रोल करो। सर्वत्र समबुद्धयाः, चाहे कोई भी हो आपको समबुद्धि रहना है, भले जो भी हो रहा है आप समझो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, किसी के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं। और दूसरा कि सर्वत्र समबुद्धयाः, सर्वभूत हितेरः सता, सब सारे जीवों के हित के लिए आपको सोचना है। तो ऐसा यदि करोगे तो क्या होगा, प्राप्नुवन्ति माम एव मना निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करेगा, किसी और को प्राप्त थोड़े करेगा, वो निराकार भी तो मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, वो भी तो मेरा स्वरूप है तो मुझे ही प्राप्त करेगा। फिर अर्जुन ने कहा कि जब आपको ही प्राप्त करेगा तो फिर जिसकी जो मर्जी आए वो रास्ते पे जाए, है ना, आपकी ओर से तो कोई ये नहीं है ना कि इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से आओ, तो किसी की मर्जी आए तो वो उस तरफ से जाए, किसी की मर्जी आए तो फिर वो साकार की पूजा करे या निराकार की पूजा करे, तो दोनों डेस्टिनेशन तो आप ही हो ना, लक्ष्य तो आप, उनको भी ते प्राप्नुवन्ति माम एव, उसने बोल दिया भगवान ने, तो वो आपको प्राप्त होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तब भगवान बोलते फर्क है अर्जुन, ऐसी बात नहीं है, जो निराकार का पथ है वो बहुत कठिन है, और वो आज भगवान बताएंगे कि वो क्यों कठिन है। भगवान कहते हैं क्लेशो धिक्का तरस तेषाम, तेषाम मतलब उनको किनको, जो अभी दो श्लोक पढ़े ना जो निराकारवादियों के बारे में, उनको क्लेशो धिक्का, अधिक मतलब मोर देन भक्ति। पहले भक्ति के बारे में बताया कि वो तो आसानी से मुझे प्राप्त करेंगे, मैं ये आसक्त मना पार्थ, एकदम उनका मन जो है वो मुझ में आसक्त हो, नित्य युक्ता उपासते, वो कंटिन्यूस मेरी भक्ति करेंगे। उनको भक्ति करने वाले को आसानी से सुलभ, तस्याहम सुलभ पार्थ, उनके लिए आसान है, बट फिर भी भगवान कह रहे हैं क्लेशो धिक तरस्तेषाम, यानी कुछ कष्ट तो भक्ति करने वालों को भी होता है, जैसे भक्ति मार्ग पर जो होते हैं उन्हें भी गुरु के द्वारा जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो जप की क्वांटिटी गुरु महाराज ने दी है वो फॉलो करनी पड़ती है, शास्त्र रीड करने पड़ते हैं, भगवान की सेवा समय पर करनी पड़ती है, और मंगल आरती के लिए सवेरे उठना, ये सब थोड़े बहुत तो अगर देखा जाए तो कष्ट है उनमें, क्योंकि अभी हम जिस माहौल में रहते हैं तो भले इतना आनंद नहीं आता है, थोड़ा बहुत कष्ट तो है, लेकिन भगवान कहते हैं क्लेशो अधिक तरसते शाम, उनको अधिक कष्ट मिलता है, उनको किनको, जो कि निराकारवादी होते हैं, और अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त मतलब जिनका स्वरूप नहीं है, आसक्त चेतसा, आसक्त यानी उनका चित्त आसक्त हो जाता है, आसक्ति जो है वो ऐसे में हो सकती है, आसक्ति आपकी किस में हो सकती है, जिसे आप प्रेम करते हो, है ना, अगर आप प्रेम नहीं करते उसके अंदर आपकी आसक्ति नहीं है, और प्रेम आप किससे करते हो, जिसका कोई स्वरूप हो, और जिसका स्वरूप ही नहीं हो उससे आप भला प्रेम कैसे करोगे। इसे भगवान कहते हैं निराकारवादियों के लिए अधिक कष्ट है, क्यों, क्योंकि अव्यक्तासक्त चेतसम, अव्यक्ता के अंदर चेत को, चित्त का मतलब होता है कि जैसे चित्त के दो काम होते हैं, एक तो आप है ना फीलिंग करते हो, थिंक, जो भी काम होता है, जो भी चीज होती है, जो बात होती है उसको फील कर रहे होते हो, और दूसरा क्या होता है चित्त का काम, कि वो स्मरण के लिए कोई ना कोई चित्र मन में रखता है। जैसे आप किसी भी चीज के बारे में सोचो, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंगो, आपके सामने फौरन एक येलो कलर का लंबा सा खूबसूरत सा मैंगो दिखा, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि रसगुल्ला, तो फिर फौरन आपको रसगुल्ला याद आया। अगर मैं आपको बोलूं कृष्णा, तो फौरन आपके सामने कृष्णा दिखा। मैं आपको बोलूं गोपीनाथ, तो आपको गोपीनाथ दिखे। मतलब आपने जो बोला उसका कोई ना कोई चित्र आपके मन में हर समय होता है। जो आप बोल रहे होते हो, तो अगर आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा कोई शब्द पार ब्रह्म परमेश्वर, मतलब उसका कोई चित्र नहीं है ना आपके पास, वो कौन सा होगा, तो आपको उस वो याद फौरन से उसके अंदर आसक्ति नहीं है। अभी मैंने बोला गोपीनाथ, तो फिर कैसे याद आएगा कि गोपीनाथ कितने सुंदर लगते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, ऐसे नेत्र हैं उनके, ऐसे होंठ हैं, इस तरह से मुस्कुराते हैं, तो फौरन से दिखता है ना। तो उनके अंदर चित्त फिक्स करना बहुत आसान है क्योंकि उनका कोई स्वरूप है। लेकिन भगवान कहते हैं कि क्लेशो देख तरसतेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जिनका चित्त जो है वो अव्यक्त में आसक्त है उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्यों, इसका कारण क्या है, आगे भगवान बताते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ता यानी जिसका स्वरूप नहीं है उसकी गति जो है वो बहुत दुखदायक है। उसके लिए गति, गति का मतलब क्या होता है, गति के दो मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है, एक मतलब होता है स्पीड। अब अव्यक्त में आपका जो है ना आकर्षण जो है वो बहुत आराम से होता है, बहुत स्लोली 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 आप उसके अंदर प्रोग्रेस कर रहे होते हो, गति आपकी धीमी होती है। लेकिन जब आपके सामने एक स्वरूप है तो फिर उसकी ओर आपका आकर्षण इंस्टेंट होता है ना। भगवान का सामने स्वरूप है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आज आप आए मंदिर में, पहली बार आए हो, लेकिन अगर आपको भगवान की ओर आप देखोगे, पहले चरणों से शुरू करोगे, इतने सुंदर सुंदर उनके चरण होंगे, उस तरह से डेकोरेट किए हुए होंगे, बहुत उनके ऊपर एक ना चंदन के साथ तुलसी का पत्ता लगा हुआ होगा। फिर आप थोड़ा ऊपर देखोगे, भगवान की ये जो टेढ़ी कमर होगी उसको देखोगे, वहां पर एक सुंदर सा है ना सेल की कमरबंद लगा हुआ होगा। और ऊपर देखोगे भगवान का वक्षस्थल इतना सुंदर, हाथों में इतनी प्यारी सी बांसुरी लगी हुई होगी, और ऊपर भगवान के मधुर मधुर होंठों को देखोगे, उसके बाद भगवान के नेत्रों को आप देखोगे, उसके बाद भगवान ने जो तुर्बन पहना हुआ है, पगड़ी पे जो मोर पंख लगाया हुआ है, और इतने अच्छे से फूलों की माला पहनी हुई है, तो क्या है? भगवान का जो साकार स्वरूप है उसके अंदर आपकी प्रगति अगर उसको ध्यान से देख लिया ना, तो इंस्टेंट प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन प्रगति होना शुरू हो गई समझो उसी समय से, वापस दिल करेगा वापस जाने से पहले एक बार दर्शन करूं, आज बहुत अच्छे लग रहे थे, एक बार मुझे आपने जो भगवान के दर्शन कराए ना, मुझे वापस से करने, वापस से देखने का दिल करेगा। लेकिन अव्यक्ता की गतिम दुखम, इसके अंदर जो है ना वो स्पीड बहुत स्लो स्लो होती है, प्रोग्रेस बहुत स्लो स्लो होती है। और दूसरा गति का मतलब होता है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य, और जो लक्ष्य होता है ना वो भी दुखदायक है। दुखदायक मतलब वो लो है। अब साकारवादियों का लक्ष्य क्या है, भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, आप अगर मेरे साकार स्वरूप को उपासना करोगे तो साकार स्वरूप को प्राप्त करोगे, लेकिन अगर निराकार स्वरूप की उपासना करोगे तो निराकार स्वरूप को प्राप्त करोगे। अब निराकार में जाकर ज्योति में एक जीव आत्मा को आनंद चाहिए, वहां पर जाकर उसको आनंद तो मिलने वाला नहीं है, समझ में आ रही ना बात। तो प्रोग्रेस स्लो होती है, डेस्टिनेशन लो होता है, यानी ब्रह्म ज्योति में जाकर उसे वो रियल टेस्ट प्राप्त नहीं होता जो कि वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम, तो अव्यक्त की जो गति होती है वो दुखदायक होती है। उसका कारण भगवान दुख किसके लिए मिलता है उसको, वो कारण बताए भगवान बताते हैं, क्योंकि देहवत बिरा वाप्यते, देहवत बिरा यानी अब देखो अनादिकाल से हम इस शरीर में रह रहे हैं, तो उनके लिए जो कि शरीरधारी है, देहवत बिरा यानी शरीरधारी, तो शरीरधारियों के लिए उस का चिंतन करना जो कि अव्यक्त है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, तो वो सर्वत्र गमन चिंतन, उसका चिंतन कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए देहवत भिरवाप्यते, यानी कि देहदारियों के लिए बहुत कठिन है। देहदारियों के लिए क्या सरल क्या है कि उसका चिंतन करे जिसका स्वरूप हो, है ना। तो भक्ति जो होती है वो रागात्मिक है। रागात्मिक का क्या मतलब है, मतलब नेचुरली है। अब हमारी आत्मा है ना, वो नेचुरली प्रेम करना जानती है, उसको प्रेम करना सिखाया नहीं जाता। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, वो उसी समय प्रेम करना शुरू हो जाता है। उसको कोई बताता नहीं, ये आपकी मम्मी है, आपको इससे प्रेम करना चाहिए, वो ढूंढ रहा होता है। छोटा होता है जब से, उसको ऐसा लग रहा होता है कि मेरी माँ मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसा लग रहा होता है ये मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। मतलब उसको ये कोई नहीं बताता कि कोई एक ऐसा होगा तुम्हारी लाइफ में है जिससे तुम्हें जी जान से ज्यादा प्यार करना है। कोई नहीं बताता ना, उसको खुद ब खुद आता है प्यार करना, और वो स्वभाव से है। ये प्रेम भगवान के लिए है, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रेम करना आत्मा का स्वाभाविक नेचर है। तो भक्ति रागात्मिक है, वो प्रेम करना जानती है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती, किधर भी चली जाए, वो भले जॉब पे जाती है तो भले बच्चे से दूर भी होती है, लेकिन उसका प्रेम कभी खत्म तो नहीं हो जाता। रात को सो जाते हैं तो भले भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे के साथ उसका प्रेम बना रहता है, कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है। उसी तरह पत्नी, जो कि पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वो भले उनका पति दूर रहता है, घर में वो रहती है, लेकिन उनका स्वाभाविक उनके साथ जो प्रेम होता है वो कंटिन्यूस रहता है। उसी तरह जो आत्मा है उसका नेचुरली प्रेम भगवान के साथ है, स्वाभाविक है। बस बात सिर्फ इतनी है कि वो प्रेम का जो संबंध है वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम न जाने कौन कौन सी योनियों से भटकते हुए आए, तो ये संबंध दूसरे दूसरे जीवों के साथ हमने निर्माण कर दिया ना, तो इसके लिए हमारे हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम है ना वो सो गया है। इंद्रिय तृप्ति में इतना अपने आप को आसक्त कर दिया कि हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम है ना वो गंदा हो गया, मेला हो गया है, स्वच्छता खत्म हो गई उसके अंदर से। तो जैसे जैसे हम कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करेंगे, कृष्ण के विग्रह को देखेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो फिर वो जाग जाएगा। कृष्ण प्रेम आपको कोई देने वाला नहीं है, ना तो मैं दूंगी और ना ही कोई और देगा। कृष्ण प्रेम तो आपका अपना खजाना है। मतलब कृष्ण प्रेम तो आपके हृदय के अंदर पहले से ही है, अनादिकाल से है। वो तो सिर्फ अभी कभी, जैसे बहुत बड़ा खजाना हो ना, बहुत बड़ा, और बहुत सालों से वो मिट्टी उसके ऊपर पड़ती रहे, धूल उसकी तरफ पड़ती रहे, तो वो मिट्टी की एक लेयर बन जाती है, तह बन जाती है, तो फिर आपको उसकी खजाने की चमक दिखेगी नहीं। बस हम जो गुरु होते हैं, जो प्राचारिक होते हैं, जो शास्त्र होते हैं ना, वो क्या लेके आते हैं, एक बड़ा सा डस्टर लेके आते हैं, फिर वो ठास 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 करके उसको साफ करते हैं और खजाना वापस से दिखने लगता है। तो कृष्ण प्रेम का खजाना हृदय में है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी हमें जो ये वचन दे रहे हैं ना, ये जो शब्द बता रहे हैं ना, उनके द्वारा उसको डस्टिंग की जा रही, उनको साफ किया जाता है। जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे तो क्या होगा, हृदयंतस्थ्यो ह्य अभद्राणी विदिनोति सुहृत्सा। हृदय के अंदर जो अभद्र आ गए ना, जिसके कारण कृष्ण प्रेम दिख नहीं रहा है, तो वो साफ होता जाएगा। और जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो क्या होता जाएगा, चेतो दर्पण मार्जन होता जाएगा। फिर कृष्ण प्रेम खुद ब खुद दिखेगा। तो ये देहदारी के लिए बहुत ही सुलभ है, क्योंकि भक्ति जो है वो रागात्मिक है, प्रेम स्वाभाविक है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रेम को हम कम नहीं कर सकते, ये नेचुरल है। नेचुरल अटैचमेंट जो है वो भगवान के साथ हमारी बनी हुई है, बस थोड़े समय के लिए हम उसको भूल गए हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिरवाप्यते, कि अव्यक्त जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उसके लिए उसके अंदर आसक्ति है ना, जैसे भगवान कहते हैं क्लेशो दिखा तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। अब उसके अंदर आसक्ति जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिसके पास शरीर है तो उसका जिसका कोई शरीर ही नहीं है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसके अंदर उसका अटैचमेंट तो बहुत मुश्किल से होगा ना। तो वास्तव में भक्तों, जैसा श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान जो है ये उनकी असीम कृपा है, जो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होने को स्वीकार करते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को इस संसार में पत्थर में, मार्बल में, फोटो में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है कि वो भक्त की सेवा को स्वीकार करने के लिए, भक्त के हृदय में अपने प्रेम को जल्दी से उत्पन्न करने के लिए वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होना स्वीकार करते हैं, ताकि जो सामने होगा उसका चिंतन कर सकेगा ना। तो इसलिए क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। अब भगवान का कोई स्वरूप अर्चा विग्रह कोई दृश्य हमारे सामने होता ही नहीं, तो फिर हम तो कभी भी भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने अर्चा विग्रह के स्वरूप में हम जैसे पतित जीवों के साथ रहना स्वीकार किया है। और ये जो भगवान जो होते ना, जैसे भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, अगर आप उसको विग्रह समझते हो, अगर आप उसको केवल मूर्ति समझते हो, तो भले आप समझो भगवान आपके लिए मूर्ति बन जाएंगे। ऐसी बात थोड़े कि आप उसको मूर्ति समझते रहे हो कि फिर भी भगवान आपके साथ भगवान की तरह डील करेंगे, नहीं। आप किस भाव से उसे देखते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भावग्राही जनार्दना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल दी कि अर्चा विग्रह जो होती है वो वैदिक मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतीक्षा की जाती है, उसके बाद जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप बन जाती है। फिर आप अगर उसको उसके साथ बात करते हो, उसके साथ प्रेम करते हो, तो वो आपकी बात का उत्तर देती है। जैसा आप उसको अगर स्नान कराते हो, उसको नहलाते हो, उसको तैयार करते हो, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हो, तो वो वैसे ही जैसे घर में कैसा एक व्यक्ति होता है, उस तरह से भगवान हमारे साथ रहते हैं। ये हम जब करते हैं ना रियलाइज, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि भगवान हमारी बात को सुन रहे हैं। भगवान हम एक बारी क्या हुआ, एक भक्त के घर में ना भगवान की मूर्ति थी, मतलब भगवान की छोटी सी विग्रह थी। तो रोजाना उसको क्या करता था, भगवान को अगरबत्ती से अगरबत्ती घुमाता था और फूल वगैरह रखता था। तो ना रोज रोज बोलता था भगवान को कि मेरे दुख दूर करो, मुझे धन दो इत्यादि, ऐसे भगवान से बोलता था। बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए भगवान की पूजा करता था, भगवान से कोई प्रेम वगैरह नहीं था और भगवान को असली भी नहीं मानता था। और ऐसे करते करते वो ऐसा यूज्ड हो गया था, उससे ऐसा लगता था कि भगवान सुनते उनते नहीं है। एक दफा उसके दोस्त ने उसको कहा तुम किसकी भक्ति करते हो, तो बोला अभी मैं भक्ति वक्ति नहीं करता हूँ, बस ऐसे फॉर्मेलिटी करता हूँ, सुबह को है ना अगरबत्ती घुमाता हूँ, लेकिन भगवान सुनते थोड़े हैं, ये अभी भगवान थोड़े होते हैं, विग्रह मतलब मूर्ति होती थोड़ी कोई भगवान होते हैं, सुनते थोड़े हैं ये, अगर सुनते होते तो हमारी मतलब इस तरह ये हालत थोड़ी होती। तो फिर उसके दोस्त ने कहा तुम्हें ना कृष्ण की भक्ति मत करो, तुम शिव जी की भक्ति करो, शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उसने क्या किया, दूसरी शिव जी की मूर्ति लेकर आए। तो शिव जी की अभी उसने क्या किया, जैसे ऊपर कृष्ण की रखी हुई थी ना मूर्ति और नीचे रखी शिव जी की, तो जो अगरबत्ती शिव जी को घुमा रहा था तो धुआं पूरा ऊपर जा रहा था कृष्ण के पास। उसने कहा कि कृष्ण तो वैसे भी मेरी बात सुनता नहीं है, अभी मैं क्या करूंगा, कृष्ण को अगरबत्ती का धुआं भी नहीं दूंगा। तो कॉटन उठाया और कृष्ण की जो विग्रह थी उसके नाक में ना कॉटन डाल दिया और फिर शिव जी की पूजा करने लगे। तो कृष्ण वो रोजाना पहले बोलता था भगवान तो मेरी सुनते हो ही नहीं, बात तो करते ही नहीं हो, तो मत असली हो या नहीं हो ऐसे करता। तो जब कॉटन भगवान की नाक में डाला तो भगवान ने कहा ओए ओए मेरा दम घुट रहा है, निकालो इसको। तभी वो इतना हैरान हो गया, बोला इतने टाइम से जब मैं तुम्हारी भक्ति करता तब तो तुमने मुझसे कभी इस तरह बात ही नहीं की और आज मैं शिव जी की भक्ति करने लगा तो तुम्हारा दम घुट रहा है। तो बोला पहले तुमने मुझे कभी असली का समझा ही नहीं था, तुम तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए मेरे पास आते थे, कभी तुम्हें लगा ही नहीं कि मैं असली हूँ। आज जब अगरबत्ती का धुआं मेरे पास आ रहा था तो तुमको ऐसा लगा कि ये ना सूंघ ले, मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि ये भी सूंघ सकता है, ये जो मैं फ्रेग्रेंस भगवान शिव जी को समर्पित कर रहा हूँ वो उधर जा रही है तो वो ले लेगा। तो जब तुमने मुझे असली समझा तो मैं असली हो गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपकी कितनी श्रद्धा है, आप उसको कितना भगवान समझ रहे हो और कितना विग्रह समझ रहे हो। ये सारा का सारा ये जो भक्ति की बेल है ना वो श्रद्धा के सहारे के ऊपर, श्रद्धा के आधार के ऊपर प्रगति करती है। तो आपके अंदर कितनी श्रद्धा है उतना ही विग्रह आपको अपना अनुभव कराती है। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर कथा है माधवेंद्रपुरी की, जो कि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। जब वो भगवान के लिए चंदन लेने जा गए थे तो फिर रास्ते में गोपीनाथ जी का मंदिर आया था और उन्होंने सुना था कि गोपीनाथ जी को बहुत ही सुंदर खीर अर्पण होती है और उन्होंने सोचा काश, जब अभी तक खीर अर्पण हुई नहीं थी, उन्होंने खाली ऐसे मन में सोचा कि राम के लिए खीर अगर मुझे उसका थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मिल जाएगा ना तो मैं अपने घर में जो मेरे गोपाल जी हैं उनको भी ऐसी खीर बना के खिलाऊंगा। बस ऐसा खाली उन्होंने सोचा और उसी टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। बोला मैं कितना इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा हूँ, मैं तो है ना भगवान को अभी तक भोग लगा नहीं और मैं कितना अपराधी हूँ केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। हालांकि उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचा ही नहीं था, उन्होंने क्यों सोचा था कि मैं एक बार इसको टेस्ट करके देखूं तो मैं अपने गोपाल जी के लिए भी यही वाली बनाऊं। लेकिन बस अंदर ही अंदर उनको इतना गिल्ट हो रहा था, वो फौरन से मंदिर से बाहर चले गए और एक सुनसान जगह पे बैठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। और हुआ यूं कि जब भगवान को खीर अर्पण की गई तो अभी टोटल 12 कटोरे खीर अर्पण होती थी तो भगवान ने एक कटोरा अपने राधा रानी के जो घेर होता है ना, जो राधा रानी का घाघरा होता है ना, उसके नीचे गोपीनाथ जी ने छुपा दिया और पुजारी ने बाकी जितने भी कटोरे खीर के थे वो सब भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और रात को जब पुजारी जी मंदिर के बाहर सो रहे थे तब गोपीनाथ जी ने पुजारी को कहा, पुजारी उठो। तो बोला कौन बोल रहा है? बोला मैं बोल रहा हूँ गोपीनाथ, इधर आओ। तो बोला भगवान आज तक आपने मेरे साथ कभी बात नहीं की और आज आप? तो बोला मेरा बहुत ही शुद्ध भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, जाओ उसको खीर खिला के आओ। तो पुजारी ने बोला प्रभु खीर तो मैंने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बोला नहीं नहीं, सारी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट की है, एक कटोरा मैंने छुपा के राधा रानी के घाघरे के नीचे रखा है, जाओ तुम उससे लेके आओ। तब पुजारी तो हैरान हो गया कि ये कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान ने चोरी की। तो फिर बहुत ही पुजारी को ऐसा लग रहा था कि कितना ये महान भक्त है जिसके कारण मुझे भगवान से बात करने का अवसर मिला। मैंने इतनी बचपन से लेकर मैंने भगवान की सेवा की, कभी मुझसे बात नहीं की और आज इस भक्त के आने के कारण भगवान ने चोरी की और मुझसे बात की। तो वो माधवेंद्रपुरी को देखने के लिए बेताब था, वो खीर लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है वो महान भक्त जिसके लिए गोपीनाथ जी ने खीर का कटोरा चुराया है, मुझे उनके दर्शन करने। तब माधवेंद्रपुरी ने कहा, सुन लिया इधर से कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो बोला मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, बताओ मुझसे कोई अपराध हुआ? बोला अपराध? आप अपराध की बात कर रहे हो? आप तो कितने महान भक्त हो, आपके लिए भगवान ने खीर चोरी करके रखी थी, आपके लिए आपके कारण मुझे भगवान के साथ बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, आप तो कितने महान भक्त हो। यदि मैं सारा जीवन आपकी भक्ति करूं तो भी कम है, आप मुझे बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? माधवेंद्रपुरी ने कहा ये तो भगवान की महानता है, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, मैं तो पतित हूँ, मैंने तो और भी भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए भगवान के ना ये खीर खाने की इच्छा की। बोला नहीं नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान ने स्वयं आपके लिए ये प्रसाद दिया है, आप इसे स्वीकार करो। मैंने कहने का अर्थ ये है कि अगर हम भगवान को भगवान मानते हैं तो भगवान भी साकार स्वरूप में हमारी हमारे साथ उसी तरह से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और ये भक्ति का पथ इतना सरल है, इतना सरल है, यहाँ पर जैसे बताया कि इसमें कोई भी। और श्रील प्रभुपाद जी ने अंतिम लाइन्स में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है। और उससे पहले बताया कि मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को ना अपनाए, क्योंकि ये जो बहुत कष्टदायक विधि है, क्योंकि ये हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते मनुष्य को चाहिए कि ये विधि को ना अपनाए। और प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। कंटिन्यूस आपकी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी, कानों को सदैव भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए मिलेगा, नेत्रों को सदैव भगवान के दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे, जिवा को सदैव भगवान की पवित्र शब्दों को उच्चारण करने में, भगवान का नाम उच्चारण करने का अवसर प्राप्त होगा, भगवान के उच्चिष्ट भोजन को स्वीकार करने का, प्रसाद खाने का अवसर प्राप्त होगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में सदैव मसरूफ रहेंगी, तो मन भी लगा रहेगा, आसक्ति बनी रहेगी। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि अगर आप भक्ति को स्वीकार नहीं करते हो और दूसरे मार्ग को स्वीकार करते हो, यानी निराकार को स्वीकार करते हो, तो फिर नास्तिक होने का संकट होता है। क्यों? क्योंकि एक बार आप जाओगे निराकार की उपासना करके, फिर अभी करते 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 क्या होगा, वो आनंद जो आपकी आत्मा को चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होगा। इवन अगर निराकार की उपासना करके ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाओगे, वहां पर भी जीव को वो आनंद रियल टेस्ट प्राप्त नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो वापस से अगर जन्म लेता है या इसी जन्म में, तो फिर वो नास्तिक हो जाता है, क्योंकि फिर उसको वो जो रियल टेस्ट चाहिए ना भक्ति का, जो उसकी आत्मा का स्वाभाविक प्रेम करने का जो, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे सारे सोशल वर्कर बन जाएगा। फिर नास्तिक की हमने देखा भी है, संसार में भी ऐसा था, जो निराकार की उपासना करते 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 फिर सोशल वर्कर हो जाते हैं, फिर वो सबके सबके साथ है ना, बस खाली उनको ऐसा लगता है कि हमें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, वो उपासना को भी भूल जाते हैं। तो ऐसे क्योंकि वो मार्ग में गति, जैसे भगवान ने कहा कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, आगे एक तो उसकी प्रगति बहुत स्लो स्लो हो रही होती है और दुखदायक है, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव व्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि श्लोक में पहले ही कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। ये युग जो है वो निराकार की सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है। तो मैं मतलब कहने का अर्थ ये है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि वाई टू टेक ट्रबलफुल पाथ वेन द इजी पाथ इज अवेलेबल, अगर सिंपल और आसान रास्ते पर चलकर भी आप सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो, तो फिर कठिनाइयों से बड़ा हुआ रास्ता क्यों अपनाया जाए, है ना। अगर आपको पता है जैसे छोटा बच्चा है, भक्ति एकदम छोटा बच्चा होता है, मतलब छोटा मासूमियत के साथ की जाती है। अभी एक छोटा बच्चा है, उसको आप बताओ कि देखो ये मेरा घर है, यहाँ से तुम्हारे घर से लेकर हमारे घर तक आने के दो रास्ते, एक रोड से जाओ, रोड भी क्या होगा, बहुत सारी ट्रैफिक होगी, गाड़ियां चल रही होंगी, इधर से आप जाओ, या फिर ये गली है ना, सिंपल सी है, सीधा सीधा गली में से आप आ सकते हो। तो भी अगर वो बच्चा सरल है, सिंपल है, इंटेलिजेंट है, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सीधे रास्ते से जाएगा, मतलब जो गली है उसके अंदर से चला जाएगा। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिहीन है, तो वो क्या करेगा, भले आएगा तो वही रास्ता ना, भले बहुत बड़ा रास्ता है, रोड से जाएंगे, इसे घूमना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वन वे से जाना पड़ेगा, या कुछ ट्रैफिक भी है, ये भी है, लेकिन फिर भी मैं वो वाला रास्ता, तो मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है, है ना। तो यहाँ पर असल में बात बताने की क्या है कि डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड सिंपल। जो बुद्धिमान है सिंसियरिटी के साथ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सादे हैं, सीधे सादे हैं, सिंपल, वो स्वयं सिंपल हैं और सिंपल वे को स्वीकार करते हैं, आसान रास्ते को स्वीकार करते हैं। और भक्ति के लिए भगवान कहते हैं तस्य हम सुलभ। यहाँ तक भागवतम में ये बताया गया कि जो भक्ति मार्ग है ना, वो इतना सुंदर है और इतना सरल है कि इस भक्ति मार्ग पर यदि आप नेत्र बंद करके दौड़ोगे ना, नेत्र बंद करके यदि आप दौड़ोगे, चलोगे नहीं, अगर आप जोर जोर से दौड़ रहे हो और आपके नेत्र भी बंद हैं, फिर भी न स्खलित न पतित, न आप कभी ढगमगाओगे और न गिरोगे। बस आपके अंदर एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, भगवान के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। ये दो काम, अब भक्ति कर रहे हो तो श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ भक्ति कर रहे हो, सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर भले आपको कुछ नहीं आ रहा है, भगवान आप श्रवण कर रहे हो, भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हो। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब आप भक्ति को अपनाते हो तो आगे चलते चलते वो दोनों आपके साथ आएंगे। मतलब वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रवेश जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च तथा। तो फिर धीरे धीरे भक्ति करोगे। भक्ति का क्या मतलब है? इस युग में भक्ति के दो मतलब है, श्रवण करो और कीर्तन करो। जैसे जैसे आप श्रवण करते जाओगे ज्ञान उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे आप कीर्तन करोगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे, तो वैराग्य आता रहेगा। तो ज्ञान और वैराग्य जो प्राप्त करने के लिए निराकारवादियों को कठिन तपस्याएं करनी पड़ती हैं, आप तो घर बैठे बैठे श्रवण करते और भगवान के पवित्र नाम का जप करके, भगवान के साथ प्रेम करके, वो सब कुछ सारे उद्देश्यों को आप केवल भक्ति मात्र से प्राप्त कर सकते हो। इस भक्ति मार्ग में पतन का कोई चांस नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह निर्णय है कि आपको यह, क्योंकि सरल है, सरल विधि है, इसलिए इसको, भक्ति विधि को अपनाना चाहिए। और दूसरा जो पाठ है, निराकारवादी का जो पाठ है, वो बहुत कठिन है, इसलिए इस युग में उसको नहीं अपनाया जाना चाहिए। भगवान कहने का मतलब, भगवान का यही साफ अगर देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं क्लेशो देखकर तरसते शाम अव्यक्त सक्त चेतसम। जो अव्यक्त यानी कि जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसके अंदर चेतना को, अपने चित्त को आसक्त करना चाहता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई है, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त जो है, जिसका स्वरूप नहीं है, उसको प्राप्त करना कठिन है और दुखदायक है, प्रगति बहुत मुश्किल से होती है। और देहवद विराप्यते, क्योंकि आप स्वयं देहवद हो, शरीरधारी हो, तो आपको अपना उपासक भी साकार चाहिए, जिसके साथ आप अपने प्रेम का संबंध निर्माण करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।